प्रिय श्रोता नमस्कार। बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर हम एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हैं और हमें विश्वास है कि आप सब आज का कार्यक्रम सुनने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, जिसका मुख्य विषय है प्रेम। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और पवित्र नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से श्रेष्ठ गीत नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक में मसीह के प्रेम और कलीसिया के प्रेम को हम देख रहे हैं। आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम में से प्रत्येक के जीवन में दिया है। हम धन्यवादित हैं हम में से हर एक के जीवन के लिए कि आपने हमें जीवितों के बीच में जीवित रखा है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हम में से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सीखते हैं समझ सकें और उसे अपने जीवन में ग्रहण करने पाएं। हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं या किसी प्रकार की चिंता और दबाव में हैं। पारिवारिक रीति से यदि उनके संबंध टूट चुके हैं, पिताजी आप अपनी शांति उनके जीवन में दें, उन पर भी अपना अनुग्रह प्रदान करें। आज के इस अध्ययन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, अगला अद्भुत पद वर के लौट आने के गीत के तुरंत बाद का है। वर के लौट आने का गीत कलीसिया के उठाए जाने के लिए मसीह के आगमन का प्रतीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मसीह और कलीसिया के प्रेम के विषय में हम इस पुस्तक में देख रहे हैं, जिसे वर और वधु के रूप में देखा गया है। तो आइए आप मेरे साथ श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 16 पद को पढ़ें। लिखा है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ, वह अपनी भेड़ बकरियां सोसन फूलों के बीच में चराता है। सुलेमान का यह गीत प्रभु यीशु मसीह और विश्वासी के बीच संबंधों का सर्वोच्च आत्मिक स्तर प्रकट करता है। इस स्तर को या इस संबंध को बाइबल में इस पुस्तक से अधिक अन्य कोई पुस्तक प्रकट नहीं कर पाती है। और मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। इससे अधिक और कोई ऊंचा स्तर नहीं है। यह हमारे प्रभु यीशु द्वारा 7 सरल शब्दों में व्यक्त सत्य से अधिक गहरा और गूढ़ थियोलॉजी का सत्य दूसरा और नहीं है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, तुम मुझ में और मैं तुम में। वधु कहती है, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। यीशु के कहने का अर्थ था, इस पृथ्वी पर मैंने तुम्हारा स्थान लिया जब मैं क्रूस पर मरा था। मैं तुम में हूँ और तुम इस पृथ्वी पर मेरा जीवन प्रकट करो। हम यह काम केवल उसके आत्मा के सामर्थ्य में होकर के कर सकते हैं। दूसरी ओर हम उसमें स्वर्गीय स्थानों में प्रिय यीशु में स्वीकृत बैठे हैं, उसके साथ एक होकर उसमें पुनर्जीवित हैं। और हम इसे पढ़ते हैं कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय उसके 1 पद में, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। कैसी अद्भुत बात है मेरे मित्रों, यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आप उससे कहते हैं क्यों नहीं कि आप उससे प्रेम करते हैं। हमारे इस युग में हमें सांसारिक वस्तुएं प्राप्त नहीं होंगी, परंतु हम धनवान हैं। हम मनुष्य के कारण महिमा नहीं पाते, प्रभु यीशु हमें महिमान्वित करता है। पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पौलुस लिखता है, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड ना करे क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है। क्या पौलुस, क्या अपोलुस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। मेरे प्रियो, हम मसीह के हैं। वह हमारा है, वह हमारा उद्धार करता है, वह हमारा चरवाहा है। हमें उसके बहुत निकट आना है और हमारी सब आत्मिक आशीषों को प्राप्त करना है। यह आत्मिक जीवन का बहुत ऊंचा स्तर है जहां हम कह सकते हैं, मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। सुसन फूलों के बीच में चराता है, यह उसके फूलों से सजे तख्त का ही चित्रण है जिस पर वह भोजन के लिए बैठा है। यह संतोष, सहभागिता, आनंद और हर एक उत्तम वस्तु की चर्चा करता है। संसार इसकी खोज में रहता है। संसार को अच्छे समय की प्रतीक्षा है। संसार सुख भोगना चाहता है। हम भी मसीह की मेज पर बैठकर उसके साथ आनंद मनाते हैं, अर्थात आनंद मनाते हुए अच्छे समय का सुख भोगें। यह ऊंचा आत्मिक स्तर है। मुझे चिंता इस बात की है कि हम इसे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। भजन संहिता 139 के 6 पद में भजनकार भी कहता है, अतः हमें वधु की नाई पुकारना है, मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। जी हाँ, हम यीशु को निहारने और अपने जीवन में उसके सामर्थ को पाने तक अपनी दौड़ में भाग नहीं ले सकते हैं। मेरा प्रेमी मेरा है और मैं उसकी हूँ। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय उसके 17 पद में लिखा है, जो इस अध्याय का अंतिम पद है, जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, तब तक हे मेरे प्रेमी उस चिकारे या जवान हरिन के समान बन जो बेतेर के पहाड़ों पर फिरता है। यहाँ हम फिर से भोर की हरिणी प्रभु यीशु का चित्रण देखते हैं। हमने पद 8 में उसे चमचमाती सुबह पहाड़ के शिखर पर खड़ा देखा है। वह विजयी दिख रहा था। पूरी रात जंगली कुत्ते उसका पीछा कर रहे थे। वह मृत्यु के द्वार पर था, परंतु पुनर्जीवित हुआ। अब इसके प्रकाश में, जबकि हम अंधकार से भरे संसार में वास करते हैं, हम एक नए दिन की प्रतीक्षा कर सकते हैं। मेरे मित्रों, मसीह में प्राप्त आपका उद्धार और आपके लिए उसका उपकार आपके लिए अर्थपूर्ण हो, इसी पर निर्भर करें। यही आपकी शांति हो। इस जीवन के अंधकार के पलों में इसे अपने सिर का तकिया बना लें। जब तक दिन ठंडा ना हो और छाया लंबी होते होते मिट ना जाए, आप प्रभु के प्रेम में बने रहें, उसमें बढ़ते जाएं। यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 से अध्ययन को जारी रखेंगे। मित्रों, अध्याय 3 दूसरा गीत ही है, परंतु गीत का दूसरा छंद है, परंतु इसका दृश्य अलग है और विचार भी भिन्न है। तो हम देखेंगे पुस्तक के आरंभ में एप्रेम के पर्वतीय क्षेत्र में थे, जहां एक लड़की थी जिसका परिवार किराए पर खेती कर रहा था। सुलेमान ने उस लड़की का दिल जीत लिया और उसे अपने साथ यरूशलेम ले आया। तब हम देखते हैं मध्य रात्रि की खोज। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है, रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मैंने कहा, मैं अब उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। मेरे मित्रों, अब दृश्य राजमहल का है। राजा किसी काम से बाहर गया है और वह घर में अकेली है। यह एक स्वप्न है जिसमें उनके अलग होने की पीड़ा का वर्णन है। वह उसे नगर की सड़कों पर खोजती है। रात के समय मैं अपने पलंग पर अपने प्राण प्रिय को ढूंढती रही। यह प्रभु यीशु के साथ हमारे आत्मिक संबंध का अद्भुत वर्णन है। यदि हमारे पास अगले दिन बहुत अधिक काम है तो हम सोचते हैं कि हमें रात में अच्छी नींद आ जाए। यदि नींद मसीह से बढ़कर हो जाए तो हमने विश्राम से भी अधिक महत्वपूर्ण बात खो दी है। ए मुडी स्टुअर्ड ने कहा, यदि मसीह पहला और सर्वोत्तम और सबसे अधिक आवश्यक है, यदि वह हमारे लिए भोजन और नींद से अधिक महत्व का है, तो वह प्रायः सदा तो नहीं, शीघ्र ही मिल जाता है। और आपको समय या नींद गंवाने की आवश्यकता नहीं, जिसे बलि करने को हम तैयार हैं। तब हमारी नींद मधुर और ताजगी दायक होती है, क्योंकि प्रभु हम में अंतरवासी है और हमारे साथ विश्राम करता है। मैं अब उठकर नगर में अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। यह प्रभु की खोज लेने का दृढ़ संकल्प है। मैं उसे ढूंढती तो रही, परंतु उसे ना पाया। यह उसका सत्यनिष्ठ अंगीकार है। अनेक विश्वासियों को मसीह नहीं मिलता है, क्योंकि वे उसे खोजते नहीं हैं। ओह, कितने विश्वासी रविवारीय आराधना में बैठते तो हैं, परंतु सत्य का सामना नहीं करते। मैंने उसे पाया नहीं। उसने तो प्रतिज्ञा की है कि संपूर्ण मन से खोजने वाला उसे पाएगा। अध्याय 4 उसके 8 पद में याकूब कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 3 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो पहरवे नगर में घूमते थे वे मुझे मिले। मैंने उनसे पूछा, क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? पहरवे ने उसे उसके प्रिय तक पहुंचने का मार्ग दिखाया। वह उनसे अधिक दूर नहीं था, अतः उसने खोज लिया। आइए पढ़ें श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय उसका 4 पद, मुझको उनके पास से आगे बढ़े थोड़ी ही देर हुई थी कि मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैंने उसको पकड़ लिया और उसको जाने न दिया, जब तक कि मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। मेरे मित्रों, उसकी खोज का कैसा अद्भुत प्रतिफल उसे मिला। मेरा प्राण प्रिय मुझे मिल गया। मैं एक बार फिर ए मोडी स्टुअर्ट का संदर्भ देता हूं, मुझे मिल गया। मुझ मनुष्य को महिमा का प्रभु मिल गया। मुझे पाप के दास को एक महान मुक्तिदाता मिल गया। मुझ अंधकार की संतान को जीवन की ज्योति मिल गई, मुझ भटके हुए को अपना उद्धारकर्ता और परमेश्वर मिल गया, मैं विधुर और अकेले को मेरा मित्र, मेरा प्रिय और प्रेमी मिल गया। सियोन के पुत्र पुत्रियों, जाओ ऐसा ही करो और वह आपको मिल जाएगा, क्योंकि आप तब ही पाएंगे जब संपूर्ण मन से खोज करेंगे। मेरे मित्रों, आज क्या आप अपने परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं? क्या आप उस सत्य को ढूंढ रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम ढूंढेंगे तो पाएंगे। आज आपके लिए अवसर है कि आप उस सत्य को ढूंढ लें, आपके उद्धारकर्ता को ढूंढ लें, क्योंकि वह आपके निकट है। आगे हम देखते हैं, मैंने उसको पकड़ लिया और जाने न दिया। मसीह के साथ अटूट संबंध बनाने में हमें परिश्रम की आवश्यकता है। हमारे जीवन में अन्य रुचियों को आने देना बड़ा आसान होता है, जिसके कारण उसकी उपस्थिति का बोध हमारे मन से समाप्त हो जाता है। स्टुअर्ट ने अति उत्तम ही कहा है, पकड़े बिना राजा चला जाएगा। वह चाहता है कि उसे थाम लिया जाए, परंतु बिना पकड़े रुकने की इच्छा नहीं रखता। इसे विश्वासी के उद्धार के खो जाने से संबंधित आप न समझें। यह प्रभु यीशु की सहभागिता से वंचित होने का विचार है। मैं उसे अपनी माता के घर अर्थात अपनी जननी की कोठरी में न ले आई। उसे खोज लेने के बाद वह उसे अपने जन्म स्थान जहां वह पहली बार उससे मिली थी ले गई। हम में से अधिकांश, हमें उस पहले प्रेम में लौट आना है। क्या आपको मसीह को ग्रहण करने के आरंभिक दिन या पल स्मरण है? क्या आपको स्मरण है कि उस समय वह आपके लिए कैसा महान था? क्या आज भी आप उससे वैसा ही प्रेम करते हैं जब पहली बार आप उससे मिले थे? आपके उद्धार के दिन को स्मरण करें। श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं तुमसे चिकारियों और मैदान के हरिणियों की शपथ धराकर कहती हूं कि जब तक प्रेम आपसे न उठे तब तक उसको न उसकाओ और न जगाओ। अब उसके साथ वह अद्भुत संगति का पुनः स्थापन हो गया है। दुल्हन के साथ सुलेमान का प्रवेश को हम देखते हैं। मेरे प्रियो, अध्याय का यह अंतिम भाग एक अनमोल रत्न है। यह राजा द्वारा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए आना चित्रित करता है। वह लड़की अपने चरवाहे के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, उसका मन उसी में लगा हुआ था। एक दिन वह अपनी दाख की बारी में काम कर रही थी कि सड़क पर धुएं का बादल उठ रहा था और किसानों में चर्चा हो रही थी कि राजा सुलेमान आ रहा है। वह तो अपने ही काम में व्यस्त थी कि किसी ने आकर उससे बड़े उत्साह से कहा, राजा सुलेमान तुझे बुला रहा है। अवाक वह कहती है, मुझे बुला रहा है? मैं तो उसे जानते भी नहीं। जब वह उसके सामने आई तब उसे पता चला कि वह तो वास्तव में उसका प्रेमी चरवाहा है। वह उस राजसी रथ में उसे अपने साथ बैठाता है और कारवां आगे बढ़ जाता है, और उसके गांव के लोग उसकी किस्मत के बदल जाने पर अवाक उन्हें देखते रह जाते हैं। मेरे मित्रों, यह चित्रण प्रभु यीशु के लौट आने का कैसा सुंदर वर्णन है। वह अपनों को लेने अवश्य आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 16 और 17 पद में लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तब हम आगे देखते हैं श्रेष्ठ गीत 3 अध्याय के 6 पद में, यह क्या है जो धुएं के खंभे के समान गंधरस और लोबान से सुगंधित और व्यापारी की सब भांति की बुकनी लगाए हुए जंगल से निकला आता है। यरूशलेम में अपनी दुल्हन के साथ प्रवेश करते हुए सुलेमान का चित्रण, सुलेमान का वैभव वर्णन से परे था। हम अगले कुछ पदों में इसका भी विवरण देखेंगे। हम विश्वासियों को इस संसार में प्रभु यीशु के गवाह होना है। गवाह होने के कारण हम मसीह में नए बनाए जाते हैं। हम में से प्रत्येक विश्वासी वह दुल्हन है जो दूल्हे के समक्ष लाई जाती है और मसीह की सुगंध हम पर चढ़ जाती है। जब हम संसार में गवाही देते हैं, गंधरस और लोबान से सुगंधित, प्रभु यीशु कैसा महान है। गंधरस उसकी मृत्यु और लोबान उसके जीवन का प्रतीक है। दोनों ही सुगंध और महिमा से पूर्ण है। श्रेष्ठ गीत 3:7 में लिखा है, देखो यह सुलेमान की पालकी है, उसके चारों ओर इसराइल के शूरवीरों में के 60 वीर चल रहे हैं। पालकी जिसमें सुलेमान बैठकर बाहर जाता था, उसके चारों ओर इसराइल के शूरवीर में के 60 वीर, वे सुलेमान के सुरक्षा कर्मी थे, वे उसके कमांडो थे। मेरे विचार में हमें प्रभु यीशु के मनुष्यत्व की सुरक्षा करना है। दूसरे शब्दों में हमें प्रभु यीशु में अपने विश्वास की रक्षा करना है। हमारा विश्वास है कि वह देहधारी परमेश्वर है। हमें वे सब शिक्षाएं अस्वीकार करना है जिनमें उसे केवल मनुष्य कहा जाता है। वह देहधारी परमेश्वर है क्योंकि वह पूर्णतः परमेश्वर है और पूर्णतः मनुष्य है। श्रेष्ठ गीत के पुस्तक 3:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, वे सब के सब तलवार बांधने वाले और युद्ध विद्या में निपुण हैं। प्रत्येक पुरुष रात के डर से जांग पर तलवार लटकाए रहता है। ध्यान दीजिए, सब शूरवीरों के हाथों में तलवारें हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार परमेश्वर का वचन हमारी तलवार है। वे युद्ध में दक्ष हैं। परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। हमें वचन को काम में लेना है, अर्थात लेने के लिए सीखना है। यह प्रभु यीशु के एक अच्छे योद्धा का हथियार है। श्रेष्ठ गीत 3:9-10 में हम पढ़ते हैं, सुलेमान राजा ने अपने लिए लबानोन के काठ की एक बड़ी पालकी बनवा ली। उसने उसके खंभे चांदी के, उसका सिरहाना सोने का और गद्दी बैजनी रंग की बनवाई है, और उसके बीच का स्थान यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से बड़े प्रेम से जड़ा गया है। उसका रथ लबानोन के देवदार की लकड़ी का बना था, उसका सिरहाना सोने का। आप कल्पना कीजिए कि वह कैसा होगा। उसके बीच का स्थान प्रेम से जड़ा गया है, जो यरूशलेम की पुत्रियों की ओर से है। यह यरूशलेम की स्त्रियों की कढ़ाई का काम था, जो अति आकर्षक हस्तकला है। इसमें भावनाओं और प्रेम का अद्भुत प्रदर्शन था। श्रेष्ठ गीत 3:11 में लिखा है, हे सियोन की पुत्रियों, निकलकर सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो। देखो वह वही मुकुट पहने हुए है जिसे उसकी माता ने उसके विवाह के दिन और उसके मन के आनंद के दिन उसके सिर पर रखा था। उसकी माता ने उसके सिर पर रखा था। पहला राजाओं के पुस्तक 1 में आप देखेंगे कि वह दाऊद की इच्छा का राजा नहीं था। दाऊद का दूसरा पुत्र अदोनिया राजा होने के लिए राजनीति खेल रहा था। दाऊद अब बूढ़ा हो गया था। उसका मन का राजकुमार अबशालोम मारा गया था। सुलेमान के लिए दाऊद के मन में कोई स्थान नहीं था। नातान बतशेबा के पास गया और उससे कहा कि वह शीघ्र ही कुछ करे, अन्यथा अदोनियाह राजा बन जाएगा। नातान और बतशेबा ने जाकर दाऊद को कुछ याद दिलाया और उसने सुलेमान को राजा घोषित कर दिया। मुझे यह अति मनभावन लगता है। उसकी माता ने उसके सिर पर रखा। उसके राजा बनने में उसकी माँ का अधिक रुचि था। दाऊद को उस पर विश्वास नहीं था। किस पर? सुलेमान पर। सुलेमान राजा पर दृष्टि डालो, यह मसीह का चित्रण है। उसके जन्म में उसे देखो, उसके जीवन में उसे देखो, उसकी मृत्यु में उसे देखो, उसके पुनरुत्थान में उसे देखो। जी हाँ, आज उसकी महिमा में उसे आप देखें, मसीह को देखें और उसे देखें जो अपनी दुल्हन को लेने के लिए फिर आ रहा है। जब प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर आया और यह बात लोगों तक पहुंची कि यह राजा है, लोगों ने इसे अस्वीकार किया। परंतु इस पृथ्वी पर रहते हुए प्रभु ने उस कार्य को किया, हमारे लिए मारा गया और फिर मृतकों में से जी उठा और स्वर्ग पर उठा लिया गया, और वह फिर से अब अपने विश्वासियों को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। लेकिन प्रश्न है, क्या आप तैयार हैं? क्या आप उसके साथ जाने के लिए अपने आप को तैयार रखे हैं? यदि नहीं, तो अब हमारे लिए अवसर है कि अपने आप को तैयार करें, ताकि हम मसीह के दुल्हन के रूप में उसके राज्य में प्रवेश करें। मित्रों, आइए आज हम अपने आप को इस वचन के प्रकाशन के अनुसार से तैयार करें और प्रभु के पास जाने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं विश्वास करता हूँ कि आज फिर से आपने परमेश्वर के इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबके साथ हो, आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है,
कभी नहीं भूला है, कभी नहीं भूला है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, मुझे नहीं भूलना है।